आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें, ओम शांति। बाबा के घर में माताओं का इतना सुंदर संगठन, बाबा भी देख करके कितना खुश होता होगा। शिव शक्तियां जिन्होंने शिव बाबा को वरा है, अपना बनाया है, ऐसी स्नेही माताएं योग भट्टी करने के लिए आई हैं। और योग भट्टी का पहला महामंत्र क्या है? मन और मुख का मौन। जब मैं इस क्लास में प्रवेश हुआ, बैठे बैठे थक गए होंगे क्लास सुनते सुनते, लेकिन बहुत आवाज थी। क्या ये पूरी सभा एक सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकती है? कोई भी प्रकार की हलचल न हो, मन और बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाए, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के बाबा को देखें और बाबा से सब शक्तियां ले लें। तो सबसे पहले मैं आप सब से एक अनुरोध करता हूं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक मिनट के लिए इस देह से डिटैच हो जाएं, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाएं, अपने स्वस्वरूप को देखें। मैं एक लाइट, चमकता हुआ सितारा, इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान प्रभु का अति स्नेही ज्योति पुंज हूँ। ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के सपूत, आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार, इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले बच्चे, बाबा बच्चे कहता है, बच्ची नहीं कहता है, आप सभी माताएं बाबा का दुलार, उसकी दुआएं प्राप्त कर रही हैं। सहज योग का अनुभव होता है? जो समझते हैं हम सहज योगी हैं, सच्चे दिल से हाथ उठाना, एक दूसरे को देख के नहीं, 50-50 हैं। सचमुच बाबा का जो आज्ञाकारी है, सपूत है, जो वफादार है, जो ईमानदार है, उसे इस मार्ग में कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। वो परमात्म दुआओं के आधार से सहज योगी जीवन का अनुभव करता है। लेकिन चलते चलते छोटी छोटी अवज्ञाएं बोझ का रूप बनती जाती हैं, और उस बोझ के कारण, भारीपन होने के कारण योग का रस नहीं आता, योग में आनंद नहीं आता। बैठते हैं दो मिनट, एक मिनट स्थिर होते हैं, एकाग्र होते हैं और फौरन बुद्धि इधर से उधर भटक जाती है। आज योगा डे है, पूरे विश्व के अंदर योग के नाम से कई प्रकार की शारीरिक व्यायाम और एक्सरसाइज प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग कर रहे हैं। बाबा ने जो हम सबको योग सिखाया है वो इतना सहज योग है कि आप सभी कितनी भी बड़ी आयु में हैं, छोटी आयु है, बड़ी आयु है, बीच की है, हर एक बाबा से संबंध जोड़ करके उनकी सब शक्तियों को ले रहे हैं। मन योग के द्वारा समर्थ और शक्तिशाली बनता जा रहा है। मन अगर हमारे कंट्रोल में आ गया तो बाबा की हर आज्ञा को पालन करना बहुत सहज है। अगर मन चंचल है, अनकंट्रोल है, तो बाबा कहेगा कुछ और हम करेंगे कुछ। इसलिए आवश्यक है हम अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल में करना सीख जाएं, उसको बहुत अच्छे अच्छे विचार दें, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प रचें और उन संकल्पों के आधार से हम प्रभु मिलन का रस लें, आनंद लें। यही योग है हमारा। और इस योग से जो शक्तियां मिलती हैं उससे हमारा तन मन स्वस्थ हो जाता है। बाबा की हम सबको पहली आज्ञा मिली जिस दिन से हमने पहला लेसन लिया, पवित्र बनो और योगी बनो। अभ्यास करो योग का। तो बाबा की पहली आज्ञा हम सब ने कितना पालन की है। जानते हैं कि आत्मा जितना जितना पवित्र शुद्ध बनती जाती है उतना योग सहज होता जाता है, और जितना योग शक्तिशाली होता जाता है उतना आत्मा पवित्र बनती जाती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक बाहरी पवित्रता को जब हम अपनाते हैं, हमारा खान पान शुद्ध हो जाता है, हमारा संग अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है, तो योग स्वतः लगने लगता है। और जब योग स्वतः लगने लगता है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, बाबा की शक्तियां अंदर की इम्प्योरिटी को समाप्त करती हैं, जो हमारे संस्कारों में विकारी भावनाएं बन गई, जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म विकार प्रवेश हो गए, जिसके आधार से कभी न कभी वो संकल्प विकल्प विकारी संकल्प चलते हैं। आत्मा जितनी बाबा के साथ कनेक्ट होती जाती है, उसके प्यार में समाती जाती है, उतना उसकी मैल कहें, बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, शुद्ध स्वच्छ बनती जाती है। तो पहली आज्ञा का पालन, बाबा की इस आज्ञा का जिसने यथार्थ विधि पूर्वक पालन किया, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण कहलाया, वो सच्चा पक्का वैष्णव कहलाया। हम सब बाबा के बच्चे इस योग भट्टी में इसीलिए आए हैं कि सूक्ष्म में भी कोई ऐसी संस्कारों की मैल हो, कोई विकारी संस्कार बहुत परेशान करता हो, हम बाबा की करंट से, बाबा की सकास से उसे समाप्त कर दें और आत्मा को सत्व प्रधान संपूर्ण पावन बना लें। सचमुच अगर ये लक्ष्य लेकर के आप 3-4 दिन यहां भट्टी करें, मैं जानता हूं जहां 4-6-10 भी माताएं बैठती हैं बिना बोले नहीं रहती, लेकिन ये 10-12 हजार का संगठन अगर सब अंतर मुक्ता की गुफा में चले जाएं, बाबा की दूसरी आज्ञा है ये, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और जितना जरूरी है उतना ही बोलो, हो सकता है ये, प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि बोल आपका बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। आप सब जानते हो हमारी दादी 48 साल से बाबा का रथ बनी, गुलजार दादी, किस विशेषता के आधार से बाबा ने इसको अपना रथ बनाया। बहुत सारी दादियां थी, बहुत सारी संदेशी थी, अच्छी अच्छी संदेशी थी। मुझे पता है जब मैं आया तो बाबा की फेवरेट संदेशी, बाबा की एक लौकिक में बहू लगती थी, संतरी दादी, बहुत फेवरेट संदेशी थी। बाबा कोई भी कार्य होता था उसको वतन में भेज देता था, बच्ची जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा से डायरेक्शन लेके आओ। दूसरी संदेशी एक थी जिससे हर कार्य के लिए बाबा और बड़े डायरेक्शन लेते थे, वो थी हमारी दीदी की बहन सील दादी, वो बॉम्बे में रहती थी। संतरी दादी मधुबन में थी, फिर कलकत्ता में रहती थी। ये सब थी बाबा के अव्यक्त होने के समय दादी ने सभी संदेशियों को सामने बिठाया। संदेशी दादी एक भुवनेश्वर में थी, तेल दादी, संतरी दादी, संदेशी दादी, गुलजार दादी, बहुत बड़ी बड़ी दादियां, संदेशी ट्रांस में जाने वाली। लेकिन जब बाबा पहली बार आए 21 जून 69 को, तो दादी गुलजार ने भोग लगाया बाबा को, और उसी समय बाबा की प्रवेशता दादी में हुई। बाबा ने दादी को कहा भी, बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को कहा, आप जिसको निमित्त बनाएंगी बाबा उसके द्वारा पाठ बजाएगा। फिर धीरे धीरे गुलजार दादी के द्वारा बाबा का पाठ चला, और आज 48 साल से उस दादी के माध्यम से हम सबको इतनी पालना मिली है, सब अनुभवी हो, अव्यक्त बाबा की मुरलियां सुनते हो, भले नए नए होंगे, अभी तक जो बाबा से सन्मुख नहीं मिले वहां तो उठाओ, सन्मुख में नहीं मिले, यहाँ बहुत हैं, देखो बहुत बैठे हैं, भट्टी में आए हैं लेकिन बाबा से नहीं मिले हैं, लेकिन मुरली तो सुनी है ना। इस समय साप्ताहिक कोर्स त्याग का चल रहा है, कितनी गहरी मुरलियां, जबकि गुलजार दादी कोई कॉलेज स्कूल नहीं पढ़ी है, बहुत छोटी उम्र में 9 साल की उम्र थी जब बाबा के पास आ गई, समर्पित हो गई। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों ने इस रथ को चुना, और इसकी एक ही विशेषता सुनाई बाद में कि इस बच्ची को बाबा ने अपना रथ क्यों बनाया। आज तक भी अगर आप लोग दादी से मिले होंगे, देखा होगा, दादी कभी भी एक भी शब्द अपने मुख से जोर से बोले, अधिक बोले नहीं। कोई बहुत कुछ पूछेगा तो 10 बातों का जवाब एक बात में दे देंगी। उन्होंने बोल की एनर्जी को बचाया, संकल्प की एनर्जी को बचाया, ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं। कईयों की आदत होती ना, कोई बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात मन पसंद नहीं है, कोई ने कुछ मेरे से कह दिया, कर दिया, हो गया, तो क्या करते हैं, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नींद फिट जाएगी, योग क्या लगेगा, उनकी परवाह, चिंता, रोएंगे, इधर सुनाएंगे, उधर सुनाएंगे, संकल्पों की हलचल नहीं सुना पाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन दादी ने अपने संकल्प को बड़ा शीतल, बड़ा शांत बना लिया, हलचल समाप्त की, और बोला इतना कम से कम जो उनके बोल आप शाम के समय सुबह से रात तक कितना बोला है वो गिनती कर सकते हो। बाबा उनको ही कहता है वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपने बोल को इतना कंट्रोल कर लिया जो गिनती किए जा सके, महावाक्य के रूप में बोल निकलने चाहिए। तो मैं आप सभी माताओं से एक अनुरोध करता हूं, आप सभी बहुत बहुत महान आत्माएं हो, भगवान ने आपको चुना है, उसकी आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, उसकी इस आज्ञा का पालन करके देखो। कम बोलो, धीरे बोलो, बहुत युक्ति युक्त और मीठा बोलो, जो जरूरी है उतना ही बोलो, तो आपकी एनर्जी बाबा यूज करेगा सेवा में। आप बाबा के बहुत सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बन सकते हो। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों का मन और बुद्धि एक टिक एक रस स्थिति में स्थित हो। बाबा की आज्ञा है मन मना भव। गीता में भी बाबा ने एक महावाक्य भगवान के आए हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे याद करो। बाबा की ये मेन आज्ञा है। जब तक हम इस देह भान से डिटैच नहीं होंगे, इस देह और देह के संबंध, सबसे पहला संबंध किसका है, आत्मा के साथ, देह के साथ, और देह में कर्मेंद्रियां संबंधी हैं हमारी, दूसरे संबंधी तो दूर के हैं, बेटा बहू बच्चे पति पत्नी बहुत सारे संबंध बन गए, विस्तार हो गया, लेकिन आत्मा का संबंध सबसे पहले हुआ इस शरीर के साथ। मां के गर्भ में आते ही शरीर मिला, प्रवेश हुआ शरीर के अंदर, और वो कर्मेंद्रियों के साथ फैमिलियर हो गया, मिलन हो गया, आंख नाक कान मुख हाथ सबका साथ लिया और उसके साथ संबंध और पाठ बजाना शुरू कर दिया। आज यही संबंधी मुझ आत्मा को धोखा देता है, दूसरे संबंध पर हमारा ध्यान रहता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैंने इसको जन्म दिया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, योग्य बनाया है, ये मेरे कहने पर चलना चाहिए, अधिकार होता है, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा करना चाहिए, और नहीं करता है तो बहुत टेंशन हो जाता है, नाराज हो जाते, उदास हो जाते हैं कि देखो हमने इसको इतना सब किया, ये मेरा कहना नहीं मानता। क्या आपकी ये कर्मेंद्रियां आपका कहना मानती हैं? ये आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुख, आपके हाथ, अगर ये मानने लगे, बाबा कहते हैं बाबा की आज्ञा है मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, स्व पर राज्य करना सीखो, दूसरों पर राज्य करने के पहले क्या मुझ आत्मा का मेरे ऊपर राज्य है, बाबा की इस आज्ञा का मैंने कहां तक पालन किया है। अगर इस आज्ञा को हमने पालन कर लिया तो क्या होगा, सहज कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमाजीत और कर्मातीत बन सकते हैं। पहली आज्ञा है ये बाबा की, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रह करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, आप करावनहार बन करके कर्म इंद्रियों से कराओ, कर्म इंद्रियां आपको न चलाएं। आजकल क्या हो गया, जैसे राजा कोई कोई मंत्री चलाने लगे, सलाहकार उसको राय दे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आज ऐसा ही हाल हम सबका हो गया, कभी मुख चला रहा है आत्मा को, कभी कान चला रहे हैं, कभी आंखें चला रहे हैं, कभी हाथ चला रहे हैं, अधीन हो गई। हम सबको बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं, स्वराज्य के मालिक हैं, अपने आप पर नियंत्रण करके स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, ये बाबा की आज्ञा है, और इस आज्ञा का अगर मैंने पालन कर लिया तो बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स दुआएं हमारे सिर पर हैं, आत्मा स्वतः सहज योगी बन जाएगी, राजयोगी बन जाएगी। बाबा की दूसरी आज्ञा और बताता हूं, नंबर आप लगा लेना। बाबा ने ये जो हम सबको दिया है, तन मन स्थूल में धन और सबसे बड़ा समय, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा धन है आपके पास, संपत्ति है, संगम युग पर हर ब्राह्मण के पास तन की संपत्ति है, इससे जितना कमाई करना चाहो आप कर सकते हो, लौकिक कार्य व्यवहार तो आप बहुत कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, घर को संभाल रहे हो, कई माताएं नौकरी भी करती हैं, परिवार भी संभालती हैं, बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं, भाइयों से भी डबल कार्य माताओं के हाथ में होता है, वो तो एक नौकरी करेंगे फिर आएंगे सो जाएंगे खाएंगे पिएंगे, लेकिन अगर माताएं अगर ये काम कोई नौकरी कर रही होंगे तो अपने घर को भी संभालेंगी, बच्चों को भी संभालेंगी, कई कार्य साथ लेकर के चलती हैं, लेकिन ये तन प्रभु की अमानत है। बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ में मेरा तन लगेगा, थोड़ा समय भी कुछ कर्मणा सेवा करेंगे, करती है माताएं, मुझे पता है, बहनें टीचर्स जो कहेंगी, दीदी जो आप सेवा देंगे, बड़े बड़े घरों की माताएं घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई होगी, सेंटर पर आके कहेंगी दीदी मैं हाल की सफाई कर देती हूं, मैं ये बर्तन साफ कर देती हूं, उनको पता है यज्ञ सेवा का क्या बड़ा महत्व है। इस यज्ञ सेवा से हमारी कर्म इंद्रियां पावन बन रही हैं, स्वच्छ बन रही हैं, उनमें उनको ये नहीं आता कि ये काम मेरा नहीं है। सभी सेंटर्स पर जहां पर माताओं का संगठन है, वहां पर अगर 5,000-10,000 का ब्रह्मा भोजन बनाना हो, मैं समझता हूं कभी किसी के आगे बहनों को कहना नहीं पड़ता है कि कैसे बनेगा, सहज रीति से सब लग जाते, सब मिलजुल करके यज्ञ की सेवा उठा लेते, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। ये तन प्रभु की अमानत है, उसकी सेवा में लगनी चाहिए, कोई भी कार्य इस तन से गलत नहीं हो सकता। आज्ञाकारी बच्चे तन केवल भगवान के कार्य में सफल करते हैं, जो उसकी आज्ञा मिली है, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख करके चलो, आज्ञा है, ऐसे नहीं कहा लौकिक को छोड़ दो, लौकिक को संभालो, लेकिन लौकिक को संभालते हुए अलौकिक पर ध्यान दो, अगर दोनों का बैलेंस रखकर चलेंगे तो जैसे लौकिक परिवार सेवा से खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसे ही परमात्म स्नेह प्राप्त होगा, दुआएं प्राप्त होंगी, उसके समीप आने का भाग्य मिलेगा। सेवा के समय कोई कहे मैं तो योग कर रहा हूं, मेरा तो योग का टाइम है, योग लगेगा ही नहीं। जब सेवा का समय है हम योग कर रहे हैं, या योग का समय हम सेवा कर रहे हैं, ये थोड़ा विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं। जिस प्रकार का समय है, जिस प्रकार का कार्य है, उस प्रकार से सहयोगी बन जाना, उस प्रकार से अपने आप को मोल्ड कर लेना, ये बाबा की आज्ञा है। बाबा हमेशा कहते हैं जो रियल गोल्ड है, जो रियल है, सच्चा है सोना, उसको कैसे भी मोल्ड कर लो, बहुत मिक्स है तो उसको मोल्ड करना बहुत मेहनत है, टूट जाएगा। आत्मा अगर सरल नेचर की बनती जाती है, सरल स्वभाव की बनती जाती है, तो हर स्थान पर हर परिस्थिति में अपने को सहज मोल्ड कर लेती है। रियल गोल्ड की निशानी है अपने आप को मोल्ड कर लेना। तो बाबा अपने बच्चों को रियल बनाना चाहता है, ईमानदार बच्चे बाबा उसको कहता है जिसकी कथनी और करनी और रहनी, जो कह रहा है वो करे और वही बोले, वही वैसा ही रह करके दिखाए, चल के दिखाए। अगर कथनी कहनी अलग है, करनी अलग है, कहते हम कुछ हैं और करते हम कुछ हैं, तो हम अपने आप से ही ईमानदार नहीं हैं। हम अपने आप से तो ईमानदार तब हैं जो हम दूसरों को कह रहे हैं वो हम पहले करके तो देखें। हम दूसरों को कहें बाबा की आज्ञा है सवेरे उठो, अमृत वेले योग करो, वरदानी समय है वरदान लो, हम उस आज्ञा का पालन करके बैठ जाएं और थोड़ी देर के बाद हम सो जाएं, नींद आ जाए, आज्ञाकारी हैं या सूक्ष्म अवज्ञा हो रही है? ये सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं। आज्ञाकारी बच्चे बहुत एक्यूरेट अलर्ट हो करके बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो इतना एक्यूरेट और अलर्ट है वो ईमानदार है। ईमानदार बच्चा जो होता है, परिवार में कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, उसे कोई चीज छिपाई जाती है? कितना भी भंडारे में पैसा पड़ा हो, हमारे यहां पर मजदूर माइयां सफाई करने आती हैं, कभी भी कोई आज तक ऐसी कंप्लेन नहीं मिली कि यहां से पैसा उठ गया या यहां से चीज चली गई। छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल भी ऐसे लोग भावना वाले होते हैं, सच्चे होते, ईमानदार होते हैं, जो उनसे कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जरा भी इधर उधर करने वाला हेरा फेरी तो उसे छिपाया जाता है। बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे इतने ईमानदार बने, मैंने इनको जो कुछ दिया है वो बांट करके दूसरों को दे करके बढ़ा दें। धन दिए धन ना खुटे, जो ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, और स्थूल में भी जो धन है, वो ऐसे सेवा में ऐसे कार्य में सफल हो जो एक का कई गुना बन जाए। द्वाज बाबा कह रहे थे ना, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है इस अंतिम समय में इंश्योर कर लो, नहीं तो नेचुरल कैलेमिटी जाएगी। अगर इस कलयुग की कोई इंश्योरेंस कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, रख दिया, तो वो इंश्योरेंस देने वाला ही चला जाए, वो कंपनी ही डूब जाए, तो कौन इंश्योरेंस करेगा। लेकिन समझदार बच्चे वो हैं जो अविनाशी कंपनी के अंदर, बाबा की कंपनी के अंदर अपने आप को इंश्योर्ड कर दें, कुछ सफल कर लें। तो बाबा चाहता है बच्चे तुम्हारे पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, जो शक्तियां हैं वो सफल करो, एक भी शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज्ञा और ईमानदारी को मैं दोनों को साथ ले रहा हूं। ईमानदार बच्चे को अगर आप पैसा दे देंगे, कोई खर्चे के लिए भी देंगे, कई अच्छे बच्चे होते हैं लायक, देखते हैं कि बाबा की भंडारी में सब लोग डालते हैं, आप उनको कहेंगे ये लो खर्चा करके आना, ये कुछ खा लेना, भले जाओ, वो देखेगा बाबा की भंडारी यहां रखी, वो चुपचाप भंडारी में डाल देगा। ये संस्कार है सफल कराने के, करने के। वो इधर उधर पैसे को बर्बाद नहीं करेगा। आजकल के ऐसे बच्चे हो गए हैं जो पैसा मिल गया उड़ा देंगे, जाके इधर से उधर कर देंगे। हम बाबा के ईमानदार बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा ने इतना हमें धन दिया, ज्ञान का धन दिया, अकुट धन है सबके पास। मैं समझता हूं कोई ऐसा नहीं कहेगा जिसके पास ज्ञान धन का भंडार न हो, अकुट भंडार है। कितना बड़ा और सुंदर स्पष्ट ज्ञान बाबा ने दिया, विचार करके देखो, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, घर का ज्ञान, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, कितना विशाल ज्ञान और इतना स्पष्ट दिया है। जो बाबा कई बार हंसी में एक बात कहते हैं, ये ज्ञान अंधों के आगे आईना है। अंधे को आईना दिया जाता है क्या? वो क्या देखेगा आईने में? लेकिन ज्ञान नेत्रहीन जो हैं, उनके लिए ये जो ज्ञान हमको बाबा ने दिया है वो उनके लिए आईने का काम करता है। तो जो ज्ञान धन हमको मिला है, हमारा कार्य है जो हमारे संबंध में आए, संपर्क में आए, जिसके साथ हमारा व्यवहार है, लेन देन चलता है, उसको जरूर कुछ न कुछ ज्ञान की बात सुनाते रहें, बाबा के समीप लाएं, उसको अंधकार से निकालें। ये दया दृष्टि, ये कृपा दृष्टि है। कितने लोग भटक रहे हैं, स्वयं को नहीं पहचानते, पिता को नहीं पहचानते, कर्मों को नहीं पहचानते, घर को नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान घर को ही भगवान समझ रहे हैं। समझ रही हो माताएं? घर जो परम परम धाम ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक है, आत्माओं का और परमात्मा का घर है, क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही भगवान है, कितना अंधकार है। और बाबा ने हम सबको कितना सुंदर ज्ञान दिया, बच्चे ब्रह्म लोक है, उस लोक में रहने वाला मालिक, ब्रह्मांड का मालिक अलग है, वो पिता है, वो परमात्मा है। अब इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमको दिया है, नशा तो रहता है ना, नहीं रहता है? किसको किसको नशा रहता है, हाथ उठाओ, सबको। बाबा ने अंधकार से बचा दिया, रोशनी में ला दिया, भटकते नहीं है, ठोकरे नहीं खाते, धक्के नहीं खाते, इतना स्पष्ट ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, और मेरा सबका पिता एक ही है परमात्मा। इसलिए मंदिरों में भटकना नहीं, इधर गए उधर गए, देवी देवताओं के आगे गए, कोई ने कहा ये इष्ट है, ये बड़ा है, ये गुरु है, अब सब भटकना बाबा ने छुड़ा दिया। अभी भी नहीं तो दो नाव में पांव है, चेक करना, दो नाव में भी कईयों के पांव रहते हैं। ज्ञान भी मिल गया, चलो ठीक है, बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन कहीं ये देवी नाराज न हो जाए, इसलिए जाओ मंदिर में पूजा करके आ जाओ, प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, कभी व्रत रख लो। एक दिन एक भाई का फोन आया, पता क्या आया, एक भाई ने मुझे फोन किया कि भाई जी एक माता जी हैं ज्ञान में चलती, मेरी लौकिक माँ, भाई कहता है मेरी मम्मी ज्ञान में चलती है, 80 साल की उम्र है उसकी, और आज एकादशी है, तो कहती है मैं निर्जल व्रत रखूंगी। अब 80 साल की उम्र में इतनी गर्मी के बीच में ये अगर एकादशी का व्रत रखेगी तो पता नहीं शाम तक बचेगी या नहीं बचेगी। आप इसको समझाओ ज्ञान क्या कहता है। आजकल देखो बाबा के बच्चे भी बन गए, कितना बड़ा व्रत बाबा ने सिखा दिया, कितना बड़ा उपवास हम सब कर रहे हैं, सब विकारों से उपवास, चंचल वृत्तियों के लिए हमने व्रत ले लिया, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें से बात करूं, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, व्रत लिया ना सबने, पक्का लिया ना, यही व्रत है ना सबका। अब ये व्रत ले लिया तो वो व्रत, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसको खुश करना चाहते हैं, बाबा खुश हो गया, सबका पिता हमारा बाबा वो खुश है हमसे, फिर किसको खुश करने के लिए व्रत रखते हैं। इसलिए कई लोग ऐसे हठ क्रियाएं करते हैं, अभी जरूरत नहीं है। बाबा ने हम सबको सच्चा व्रत सिखा दिया है, एक बाबा की याद में रहो, एक व्रता बन करके रहो, ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए मैंने कहा माता जी क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहती भाई हमने ये व्रत भगवान के सामने, गुरु जी के सामने लिया था कि हम एकादशी को व्रत रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे। बाबा ने ऐसा तो हठयोग ने सिखाया ना, तो सभी ध्यान रखना बाबा के, हम सब आज्ञाकारी बच्चे, ज्ञान धन है, इतना श्रेष्ठ धन बाबा ने दिया जो भटकने से इधर उधर धक्के खाने से छुड़ा दिया, अब इसका दान करो। गुण है, बाबा ने हमको चरित्रवान बनाया, गुणवान बनाया, कितनी सहनशीलता है, कितनी समाने की शक्ति है, कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, अंतर्मुखी हैं, बाहिमुक्ता समाप्त हो गई, इन गुणों का दान करो। कितनी शक्तियां हैं, कितना समय बाबा ने हम सबको दिया है, अमूल्य समय है, ये समय एक एक पल सफल हो, एक पल भी व्यर्थ न जाए। संगम की घड़ियां बहुत अनमोल हैं, बाबा कहता है एक एक घड़ी एक एक वर्ष के समान है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गवाओ इधर उधर की बातों में। आज्ञा बाबा की है, बच्चे कभी भी पर चिंतन और पर दर्शन नहीं करो, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हो तो सबसे अच्छा साधन है स्वचिंतन करो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए हम बाबा के बच्चे बन गए, कोई भी आकर के आपको सुनाए बहन जी ऐसी हैं, फलाना ऐसा है, वो ज्ञान तो बड़ा अच्छा देता है लेकिन उसमें ये है, इसमें ये है, बाबा कहता है अगर तुमने कभी भी किसी की कमियां देखी, अवगुण देखे, गलतियां नोट की, तो तुम्हारे अंदर उस गलतियों का, उन अवगुणों का पहाड़ हो जाएगा। मम्मा हमेशा एक बात कहती थी, आप सभी मातेश्वरी की स्मृति दिन पर आए हो, 24 जून मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है, मम्मा की एक बात याद रखना, मम्मा हमेशा एक पाठ पढ़ाती थी, हर एक आत्मा अपनी कमियों को छोड़ना चाहती है, वो छोड़ने के लिए मेहनत करती है, जो छोड़ना चाहती है उसकी छोड़ी हुई चीज को तुम क्यों देख रहे हो, उठा रहे हो, अगर उसके वो छोड़ रहा है और तुमने ग्रहण कर ली तो छोड़ने वाला आपसे आगे चला जाएगा। कमियां उसकी हैं, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, और हमने उसको देखा और देख करके वातावरण बना दिया। दो को सुनाया, चार को सुनाया, छह को सुनाया, और उस बात का बतंगड़ बन गया तो क्या होगा, उसका बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा की आज्ञा है, नोट करना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। व्यर्थ नहीं सुनना, व्यर्थ नहीं बोलना और व्यर्थ नहीं देखना। लेकिन बाबा ने और दो बातें अंडरलाइन की, व्यर्थ नहीं सोचना और व्यर्थ नहीं करना। अगर सचमुच बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हो और बनना है मुझे बाबा की आज्ञा का, पालन करना है, तो अंडरलाइन कर लो, गांठ बांध लो। माताओं को बाबा कहता था गांठ बांध लो कि मुझे व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, कोई कितनी भी बातें इधर उधर की करे, जिसकी है वो जाने, उसके कर्म जाने, उसका हिसाब किताब जाने। मैं अपनी कमियां निकालने के लिए बाबा के घर में आया हूं, मुझे किसी की कमियों को नोट नहीं करना। अगर कोई कमी किसी की दिखाई देती है तो वर्णन करने से वो कमी समाप्त नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा, उसको शुभ भावनाओं का सहयोग दो, उसके लिए कुछ योग करो, शुभ चिंतक वृत्ति से एकांत में बैठ करके उसकी मनसा सेवा करो, ये आत्मा बदल जाए, इसका ये संस्कार सुधर जाए, ये बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाए, ऐसा लक्ष्य रख करके योगदान दो, न कि उसकी बातों को इधर उधर फैला दो। तो पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, ये तीन पंख काटने हैं। अगर इस ज्ञान मार्ग में किसी को आगे बढ़ना है तो पर मत का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। एक है अपने मन की मत, श्रीमत में मन की मत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, कौन संपूर्ण बना है, बहुत बातें तो बड़ी बड़ी हैं, ऐसा तो कहां संभव है, हम पता नहीं देवता बनेंगे या नहीं, ये मन मत। भगवान हम पर विश्वास रखा है कि ये मेरे देवता घराने के बच्चे हमारे इस घर में आए हैं, मधुबन घर तक पहुंच गए, माना आपको सतयुग का पासपोर्ट तो मिल गया। बाबा का आपके ऊपर इतना विश्वास है, कल्प पहले भी बाबा ने आपको बनाया है, बने थे बनेंगे, और आपको पता नहीं बनेंगे या नहीं, मेरे अंदर तो अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता, ये कमी है, ये कमजोरी है, तो बाबा कहता है बच्चे ये दिल शिकस्त की बीमारी बहुत खराब है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की बीमारी से हार्ट अटैक हो जाता है ना, अगर कभी भी निराशा और उदासी आ गई तो समझ जाओ अभी ब्लॉकेज शुरू हो गई, कभी भी उदास नहीं होना। बाबा ने अपना बच्चा बना लिया है, हम भगवान के बच्चे बन गए, उसकी नजर पड़ गई, उसकी पालना और दृष्टि मिल रही है, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसलिए हम बहुत बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इस ऊंचे सम्मान में रहो, कभी भी निराश और उदास नहीं होना, नहीं तो निराशा और उदासी कई प्रकार की और बीमारियों को ले आती है, खुशी नहीं रहेगी, सेवा का उमंग नहीं रहेगा, मुरली में मजा नहीं आएगा, ब्राह्मण परिवार अच्छा नहीं लगेगा, ब्रह्मा भोजन भी किनारा हो जाएगा, करेंगे भी नहीं, दूसरों को भी करने नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी निराशा और उदासी को सामने आने नहीं देना, कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छे अच्छे संकल्पों में रहने की श्रीमत मिली है। बाबा कहता है बच्चे पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो। तो नेगेटिव सोच सोच करके हमको कभी भी अपने मन को दूषित नहीं करना, कलुषित नहीं करना, मन को बहुत अच्छा बनाओ, अच्छे अच्छे विचार करो, सब अच्छा होने वाला है। कल भी अगर विनाश हो जाए, इतना बड़ा भयानक विनाश हो जाए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सतयुग आएगा, इससे बड़ा भाग्य क्या है। इसलिए इतना पॉजिटिव सोच करके जो होने वाला है बहुत अच्छा होगा, और इस समय हमको समय मिला है, अपने संकल्प श्वास समय संपत्ति को सफल करने का। कल किसने देखा? कहते हैं कल काल का नाम है, कल काल का नाम है। करना है जो आज करो, अब करो। तो जो शुभ संकल्प आए, तन मन धन समय श्वास संकल्प, जो अच्छा काम करने का संकल्प आए वो अभी कर लो, कल तो अच्छा होने वाला ही है। तो बाबा की आज्ञाएं बहुत सारी हैं और उनको अगर आप नोट करेंगे ना, बाबा की हर मुरली में कम से कम 25-30 आज्ञाएं होती हैं। साकार बाबा की मुरलियां आप पढ़ो, आपको बाबा की आज्ञाएं क्या क्या है लाइन में आ जाएगा, ये करो ये करो ये करो ये करो, सीधा सीधा। तो आज्ञाकारी बनेंगे तो वफादार। वफादार जानते क्या होता है? कौन कौन जानता वफादार का अर्थ? वफादार माना पतिव्रता। पतिव्रता, पतिव्रता नारी के लिए कहते हैं, कहीं पर उसकी आंख नहीं जाती, एक के सिवाय दूसरे में आंख नहीं जाती, वफादारी उसको कहा जाता है। जैसे जानवर होते हैं ना, जानवरों में सबसे वफादार कुत्ते को कहते हैं, जिस मालिक ने उसको पाला, जिस मालिक के हाथ से वो खाता पीता है। अगर मालिक के ऊपर कोई संकट आ जाए तो अपनी जान दे देगा। पता है, एक घोड़े में वफादार चेतक का घोड़ा गाया हुआ है, कितना वफादार था। मालिक उसको प्यार करता था, उसको सहलाता था, उसको अपने हाथ से दाना खिलाता था, राणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था, इतना वफादार था। जब उसको मुगलों ने घेर लिया लड़ाई के मैदान में, यहां पर उदयपुर के पास एक हल्दी घाटी है, तो वो घोड़े पर बैठा हुआ भाग रहा था इधर से उधर बचने के लिए, तो पहाड़ों पर, आबू के पहाड़ों पर, इधर अरावली की चोटियों पर, तो जब चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, दुश्मनों ने घेर लिया, तो चेतक बड़ा समझदार था, तो वो बहुत बड़ा एक नाला था सामने, उसको बचाने के लिए वो नाला कूद गया, मालिक को बचाने के लिए। और नाला इतना बड़ा था, जो कूदा तो बेचारे की खुद की जान चली गई, घोड़े की चली गई, लेकिन राजा बच गया, महाराणा प्रताप बच गया। ये वफादारी है कि जो मालिक हमको इतना पालना दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उस मालिक के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसको वफादारी कहते हैं। तो हम सब बाबा के वफादार बच्चे हैं। बाबा हमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, पढ़ा रहा है, इसी जीवन में फरिश्ता बना दिया, इसी जीवन में दिव्य गुणों से सजा दिया, कितनी पवित्र शुद्ध जीवन है। खान पान देखो, बोलचाल देखो, ड्रेस देखो, कितनी रॉयल्टी आ गई, कितनी प्योरिटी आ गई। भले कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, बाबा ने कुछ नहीं देखा, ये सब मेरे बच्चे ब्रह्मा के मुख के बच्चे हैं। कितनी सुंदर जीवन दे दी, तो उसके ऊपर वफादारी। बाबा को मुझे प्रत्यक्ष करना है, बाबा के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, यज्ञ के लिए, हमारे आश्रम के लिए कोई कुछ नहीं गलत कह सकता, उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़ता, मिल नहीं जाएंगे। गलत के साथ अगर कोई गलत कह रहा है तो हम भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। तो वफादारी इसको कहते हैं कि एक के सिवाय दूसरा कोई भी बुद्धि में ना आए, कहीं पर भी कोई आकर्षण न हो, कोई खींच न ले, कोई अपना प्रभाव न डाल दे। चाहे कितने बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले आ जाएं, कोई ऐसे भगवत उठाए और सोने की अंगूठी निकाल दे, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा, बड़ा चमत्कारी, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है, यही भगवान है साक्षात। नहीं, ये तो सब रिद्धि सिद्धि है, ये तो चमत्कार है। बाबा ने हम सब कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ये रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाई, बाबा तो हमको मनुष्य से देवता बना रहा है, गति सदगति दे रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहा है। तो ऐसे बाबा के लिए हम समर्पित हैं। कभी भी कोई देहधारी कितना भी गुणवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, ध्यान रखना, कोई भी मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा की आज्ञा है बच्चे किसी देहधारी से प्रभावित नहीं होना, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। प्रभु देन है उसकी, बाबा को देखो, उसको दी है विशेषता, लेकिन यही सब कुछ है उसमें फंस गए लटक गए तो दुर्गति होगी। इसलिए सदगति दाता हम सबको कहता है किसी भी देहधारी में प्रभावित नहीं होना, और दूसरा क्या कहता है, किसी से भी नफरत नहीं करना। कोई कुछ भी गलत कर रहा है, मुझे गालियां भी दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष भावना वैर भावना उत्पन्न न हो। कोई कारण है, कोई हिसाब किताब है, चुकतु हो रहे हैं, पूरे हो जाएंगे, बहुत अंदर की एक रस स्थिति से उसको माफ करो, क्षमा करो। दो बातें बाबा हम सबको सिखाता है, बच्चे अगर कहीं क्षमा लेनी पड़ती है तो बहुत झुक करके नम्र चित्त होकर उसे क्षमा ले लो। आपकी कोई गलती है ले लो क्षमा, कोई हर्जा नहीं, और गलती नहीं भी है तो कोई सामने आकर के कुछ कह रहा है क्षमा मांग रहा है तो क्षमा कर दो। ये बाबा ने हम सबको सिखाया है। तो क्या होगा, इसे कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। घर घर में जो झगड़े हो जाते हैं उसका कारण है कोई झुकना नहीं सीखता। बाबा ने हम सब बच्चों को झुकना सिखाया, मरना सिखाया, सहन करना सिखाया। कहता है एक चुप, बाबा का स्लोगन है एक चुप सौ भला। कोई बात आपको कह रहा है आपको अच्छी नहीं लग रही, गाली भी दे रहा, आप एक मिनट के लिए चुप हो जाओ, कब तक बोलेगा। और हमने उसको अगर स्वीकार नहीं किया तो उसके पास उसका रिटर्न हो जाएगा। इसलिए बाबा का एक मंत्र याद रखना, बाबा कहता है, खास मैं माताओं को सुना रहा हूं, बाबा कहता है बच्ची कभी भी न दुख देना न दुख लेना। तो कई बच्चे हैं बाबा के, कहते हैं बाबा दुख देते तो किसी को भी नहीं है, लेकिन कोई मुझे देता है तो हो तो जाता है ना, ले लेते हैं। पक्का करेंगे क्या इस भट्टी में सभी, दुख लेना भी नहीं। अगर ऐसा वायदा कर लिया ना तो जल्दी से जल्दी बाबा का काम संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाबा को आंसू बहाने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते, रोने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते, छोटी छोटी बातों में एकदम परेशान होने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। बाबा चाहता है ये मेरे बच्चे अपनी शान में रहें, कभी भी परेशान नहीं हो, कोई कितना भी परेशान करे मैं अपनी शान में रहूं। बाबा ने मुझे कौन कौन से टाइटल दिए हैं, तो जब अपने शान में रहेंगे कभी परेशान नहीं होंगे और सबको सम्मान देंगे। इसलिए बाबा का ये याद रखना श्रीमत, सम्मान में रहना है सम्मान देना है। तो सम्मान में रह करके सम्मान देते चलो तो घर का टकराव अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर कुछ भूल हुई है, कोई डिबेट हो रही है, सॉरी ठीक है सुधर लेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, बस इतना ही कहना ना, इतना कहने में क्या जाता है, कह सकते हो, ताली तो बजा दिया, कह सकते हो सॉरी। दादी पता क्या कहती थी, बहनों को सिखाती थी दादी, बड़ी दादी हमारी प्रकाशमय दादी कहती थी, साड़ी करने में तुम्हारी साड़ी खराब नहीं हो जाएगी, साड़ी कर लो, कोई भी बात होती है झुक करके सॉरी माफ करो, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, बस हार मानी, झगड़ा टूटा, हारमनी हो गई। तो दादी के ऐसे ऐसे शब्द माताएं जरूर याद रखना, हमारी बड़ी दादी के बहुत अच्छे शब्द थे, कहती थी हार मानी झगड़ा टूटा, कहीं भी कोई डिबेट हो रही हो, कहीं तकरार हो रही हो, कहीं तू मैं हो रही हो, भाई ठीक है आप ठीक हो मैं गलत हूं, थोड़े समय के लिए झुक गए, हार मान ली, झगड़ा खत्म हो गया। नहीं नहीं ये आप गलत हो, बाबा इतना डिबेट क्यों कर रहे हो, जो गलत हो तो गलत है ही ना, तुम डिबेट क्यों कर रहे हो। इसलिए बाबा की ये शिक्षाएं याद रखेंगे तो बाबा के आज्ञाकारी वफादार ईमानदार और सपूत बच्चे बनकर के हम बाबा की दुआएं ले सकते हैं। बहुत प्यार करेगा बाबा अपने बच्चों को, اور کہے گا آ جاؤ میرے وطن میں بچے, تو سب تیار ہو چلنے کے لیے, بابا بلائے ہم ایک سیکنڈ میں بابا کے پاس پہنچ جائیں, تو چلو ابھی ایک منٹ کے لیے بابا کے پاس پہنچ جاؤ سبھی, اوم شانتی, اڑ چلو بابا کے پاس.
رکھ لوں دل کے ساتھ تمہیں.